पांचवें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो देहादि का स्वामी आत्मा न तो अमुक कर्म कर इस प्रकार लोगों को कर्तापन को उत्पन्न करता है। शंकराचार्य जी कहते हैं व्याख्या में कि देह का जो स्वामी है, देह का स्वामी कौन है? आत्मा। आत्मा मतलब ब्रह्मा, जो आत्मन है वो क्या करता है? तुम ऐसा करो, अमुक कर्म करो, ऐसा नहीं कहता है, किसी को नहीं कहता है। इस प्रकार लोगों को कर्तापन को उत्पन्न करता है और न रथ घट महल आदि कर्म जो अत्यंत इष्ट है उनको रचता है और न ही वो को कर्म करता है, न किसी को कहता है करो और न ही किसी कर्म को रथ महल आदि को उसकी सृष्टि भी वो नहीं करता है। अच्छा, तथा न रथ आदि बनाने वाले को उसको कर्म फल के साथ संयोगी रचता है और न ही जिसने वो बनाया, रथ बनाया या घर बनाया, उसको जो कर्म फल मिलेगा उसका भी संयोग नहीं करता है। जो आत्मा है वो किसी को कहता नहीं है कि तुम ये करो, नंबर वन। नंबर टू, वो कोई कर्म भी नहीं करता है। नंबर थ्री, जो लोग कर्म करते हैं उसका कर्म फल का संयोग भी नहीं करता है। यहां प्रभु का मतलब है आत्मा, याद रखना, हम ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं देह आदि का स्वामी आत्मा, तो आत्मा जो है वो किसी को कुछ करने को नहीं कहता है, ना कोई कर्म करता है और न ही कर्म फल का कोई संयोग करता है। यदि यह देहादि का स्वामी आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं करता कराता तो फिर यह सब कौन कर रहा है और करा रहा है? इस पर कहते हैं, अब प्रश्न आता है ना, कौन कर रहा है, कौन करता है बताओ? आत्मा अगर नहीं कर रहा है तो संसार में तो दो चीजें हैं, बहुत सिंपल आंसर है, एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा है। अगर आत्मा कहता है कि मैं नहीं करता हूं, किसी को कोई कर्म भी नहीं करने को कहता है और ना कोई कर्म फल का संयोग करता है, तो कौन कर रहा है? सिंपल आंसर, अनात्मा कर रहा है। वही कह रहे हैं स्वभावस्तु प्रवर्तती, स्वभावस्तु स्वभाव ही वर्तता है, अर्थात जो अपना भाव है, जो अपना भाव मतलब हमारी जो वासना है, वासना को ही हम स्वभाव कहते हैं। अविद्या जिसका स्वरूप है, वासना को हम अविद्या भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, माया भी कहते हैं, राग द्वेष भी कहते हैं, त्रिगुण भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं, एक ही शब्द के कई पर्यायवाची हैं। अविद्या जिसका स्वरूप है, जो दैवी ही इत्यादि श्लोकों से आगे कहे जाने वाली है, वह प्रकृति यानी माया ही सब कुछ कर रही है। अब क्लियर ना, एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। कौन करता है? प्रकृति करती है, माया करती है। आत्मा कुछ नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता। कर्म फल का संयोग आत्मा नहीं करता है। कौन करता है? ईश्वर करता है। आत्मा और ईश्वर में फर्क है। अच्छा, फिर और कहते हैं, ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जंतव, ना अदत्ते कश्चित पापम, किसी का पाप नहीं लेता। आत्मा किसी का पाप नहीं लेता। और न चैव सुकृतम विभु, ये विभु, विभु कौन है? जो आगे जिसको प्रभु कहा था उसको अभी विभु कह रहे हैं। वो आत्मा जो है किसी का पुण्य भी नहीं लेता है, पुण्य भी नहीं लेता है। अच्छा, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंती जन्तव, जन्तव मतलब ऑल बीइंग्स, जिसका जन्म हुआ है वो है जन्तव। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, ज्ञान जो है वो अज्ञान से ढका हुआ है। तेन मुह्यंती, उसके कारण लोग मोहित हो गए हैं। मोहित होकर कहते हैं कि मैं करता हूं, आई एम डूअर, आई एम डूअर। क्यों मोहित है? अज्ञान के कारण। ज्ञान नहीं है उनको। क्या ज्ञान है? आत्मा कुछ नहीं करता है। कौन करता है? प्रकृति करती है। हम क्या कहते हैं? मैं करता हूं। देखो भगवान साफ साफ कहते हैं, कौन करता है? प्रकृति या माया करती है, जिसको हम लोगों ने अभी बताया अनात्मा। करती प्रकृति, और हम कहते हैं मैं करता हूं। तो लोग मोहित हैं क्योंकि उन सबको अज्ञान है। जीवों का विवेक विज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। विवेक विज्ञान, विवेक विज्ञान किसको कहते हैं? इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि से ही तो आप विवेक करते हो ना। तो विवेक विज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञान क्या है? मैं करता हूं। और भी कई कुछ है जिसकी चर्चा अभी 15वें श्लोक में अभी हमने की है, वो सब अज्ञान है। देखेंगे, और संसारी जीव ही करता हूं, कराता हूं, खाता हूं, खिलाता हूं, इस प्रकार मोह को प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञान नहीं है इसके कारण कर रहे हैं। अच्छा, तो अज्ञान कैसे हटेगा? भगवान ने तो कह दिया ना, अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम, ज्ञान को अज्ञान ने आवृत कर दिया है। आवृत करना, ढक दिया है। जाएगा कैसे? भगवान बताते हैं कैसे जाएगा। 16वां श्लोक,
ज्ञानेन तु तदज्ञानम्,
ज्ञानेन तु तदज्ञानम्,
येषां नाशितमात्मनः,
येषां नाशितमात्मनः,
तेषामादित्यवज्ञानम्,
तेषामादित्यवज्ञानम्,
प्रकाशयति तत्परम्,
प्रकाशयति तत्परम्,
ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्।
देखो एक वर्ड आया वहां, तत्ज्ञानम्, ज्ञानेन, ज्ञान से। तू, तू मतलब इंडीड, अवश्य ही। तद अज्ञानम नाशितम, वो अज्ञान नाश हो जाएगा। कौन सा अज्ञान? जिस अज्ञान की चर्चा श्लोक नंबर 15 में की गई, वो क्या है? कि जिस अज्ञान ने आत्मा को ढक कर रखा है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ज्ञान को ढक के रखा हुआ है, उस अज्ञान की चर्चा हो रही है। जिस अज्ञान ने सबको मोहित करके रखा है, तेन मोहयंती जंतव, उस अज्ञान ने सबको मोह करके रखा हुआ है। और यह अज्ञान किस चीज का है? यह अज्ञान हमारी आत्मा के संबंध के कारण है। हमारी आत्मा का संबंध, हमको हमारी आत्मा क्या है ये हमको पता नहीं है, आत्मा का नेचर हमें पता नहीं है। तो अज्ञान किस बारे में है? अज्ञान आत्मा के बारे में, कि मेरे को आत्मा के बारे में नहीं पता है। अच्छा, मैं करता हूं भोगता हूं, ये अज्ञान है। देखो, आस्ते 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 हम भगवान ने उसके पहले कहा कि मैं किसी को करने को नहीं कहता, मैं कोई कर्म नहीं करता, मैं कर्म फल का कोई संयोग नहीं करता। तो अज्ञान का मतलब क्या है? अगर मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं, भोक्ता मानता हूं, ज्ञाता मानता हूं, मनता मानता हूं, तो ये सब ज्ञान है, ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। ज्ञाने न ये शाम तु नाशितम, ये जो है ज्ञान से नाश हो जाएगा। मैं करता हूं भोगता हूं, ये ज्ञान से नाश हो जाएगा। आप कौन हो? मैं आत्मा हूं जो कि अकर्ता है। मैं अकर्ता आत्मा हूं। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो हमको पता लगेगा कि मैं तो करता नहीं हूं, आत्मा अकर्ता है। तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया गया था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विद्धि, उस ज्ञान को पाओ। कैसे पाओ? प्रणिपातेन, पहले जाके क्या करो? दंडवत प्रणाम करो प्रणिपातेन, उसके बाद में सेवया, सेवा करो। सेवा करने के बाद में फिर प्रश्न करो। ऐसे जाके नहीं बोलते हैं, गुरु यू नो दिस थिंग और नॉट, बताओ। पहले जाके आपको सेवा करनी होगी, उसके बाद में आपको ज्ञान मिलेगा। अच्छा, ये ज्ञान क्या है? कर्म अकर्म विकर्म में तत्व का ज्ञान जो है, हमने ये देख चुके हैं। हम चौथे अध्याय में जो उसका प्राण श्लोक है, 14वां श्लोक, उसमें हम देख चुके हैं कि विकर्म का तत्व ज्ञान यानी अकर्ता का ज्ञान जो है, यही ज्ञान है। मैं कौन हूं? मैं अकर्ता आत्मा हूं, ये ज्ञान है। अच्छा, उस ज्ञान होने के बाद में क्या होगा? फिर सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन मतलब सब जगह हम एक देखेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मनाहुतम ब्रह्म निगम, ये सब हो चुका है, ये आपको आएगा। ये सब मिला के है क्या? सब मिला के जीव ब्रह्म ऐक्य का ज्ञान है। ज्ञान क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव ही ब्रह्म है, ये ज्ञान है। हम अपने आप को क्या मानते हैं? जीव मानते हैं। अब मैं अगर कहूं कि आप ब्रह्म हो, आप नहीं मानोगे भी। मगर शास्त्र कहता क्या है? जीव ब्रह्म ऐक्य, यही ज्ञान है, जीव ही ब्रह्म है। 13वें अध्याय में जाके भगवान बोलेंगे, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, आपके बीच जो जानने वाला जो बैठा है वो मैं हूं, ऐसा बहुत साफ भगवान कहेंगे वहां जाके। तो अद्वितीय आत्मज्ञान जो है, यही ज्ञान है, अद्वितीय आत्मज्ञान। आत्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है। अच्छा, जिसका अज्ञान ज्ञान से चला गया, उसका फिर क्या होता है? तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जैसे सूर्य से अंधकार चला जाता है, वैसे ही ज्ञान से जो है हमारे भीतर का अज्ञान चला जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ना, जैसे सूर्य अभी आया नहीं है, अभी उसको हम पहले कहते हैं अरुण आया है, तो तो अरुण के आने से ही थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश हो जाता है। लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, पौ फूट गई, पौ आ गया, मतलब थोड़ा सा प्रकाश आया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जैसे 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 हम ज्ञान में थोड़ा सा हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एंग्जाइटीज और वरीज कमती जाएंगी, अंधकार कमता जाएगा, प्रकाश बढ़ता जाएगा, समझे। जैसे अरुणोदय के समय में अंधकार आस्ते आस्ते छटना शुरू होता है, वैसे ही जैसे जैसे आप ज्ञान के अंदर थोड़ा बढ़ते जाएंगे, आपकी एंग्जाइटी और वरीज कमती जाएंगी। कैसे कमती होंगी, क्या विज्ञान है उसके पीछे? अरे भाई, आपको पता लग गया कि अनात्मा की सारी चीजें नाशवान हैं, परिवर्तनशील हैं। अभी हम चिंता किस चीज की करते हैं, किस चीज की एंग्जाइटी वरीज होती है? नाशवान वस्तुओं के लिए हम परेशान रहते हैं। जब भी आप कभी भी दुखी हो गए, आप देखोगे उसको निकालो, उसका खोज के निकालो कि भाई किस कारण दुखी हो रहे हैं। पैसा नहीं है, अरे अनात्मा है। सिर दर्द है, अनात्मा है। देखो, आप अगर इस तरह से चिंतन करोगे, भाव आने लगेगा, तब आप उसको उतना महत्व नहीं दोगे, उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। अभी हम उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा, ये अज्ञान जो है कैसे ज्ञान को ढकता है, इसका उदाहरण हमारे विवेक चुराए बहुत सुंदर दिया गया है। आपको यहाँ तो नहीं नजर आता है, अभी अम्मा ने बताया कि उनके वहाँ से वो लेक में से वो फुहारा भी निकाल के लेके चले गए। आज सर्दियाँ आ रही है, फिर फुहारा लगाएंगे। इंडिया में आपको बहुत से तालाब के अंदर आपको नजर आएगा कि वो ढक जाता है मॉस से। उसको क्या बोलते हैं, काई है, सेवला भी बोलते हैं, काई बोलते हैं। पत्तों से भर जाता है, पानी नजर नहीं आता है।
कोचुरी पाना,
अच्छा। फिर उसको क्या करते हैं लोग उसको अगर पानी चाहिए होगा तो थोड़ा सा वो कोचुरी पाना को थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो पानी नजर आता है, उसमें से पानी लिया, उसको छोड़ दिया, फिर वापस आ जाता है, फिर छोड़ देता है वापस। तो हम लोग का अज्ञान भी हटाते हैं, जब क्लास में आते हैं थोड़ा सा हट जाता है, जहां क्लास के बाहर गया फिर से आ गया, फिर से ढक जाता है, फिर वहीं के वहीं फिर पहुंच गए। अच्छा, देखो सूर्य कुछ नया बनाता नहीं है, केवल प्रकाशित करता है, और जब प्रकाशित करता है तो फिर कुछ छिपा नहीं रहता है। उसी तरह ज्ञान जब आ जाता है ना, तो सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, सब कुछ ठीक ठीक समझ में आ जाता है, कोई चीज अब छुपी हुई नहीं है। आपको समझ में आ गया कि हम कौन हैं। अब प्रश्न होता है कि कैसे हम ज्ञान में स्थित हो। ज्ञान तो हमको पता लग गया, क्या ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मन हूं, मैं अकर्ता हूं, यह ज्ञान तो हमको मिल गया कि जीव और ब्रह्म एक हैं, यह भी ज्ञान हमें मिल गया। हम उसमें स्थित कैसे हों, स्थित कैसे हों। 17वां श्लोक,
तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः।
देखो, कर्म संन्यास जो है ना, पूरा एक श्लोक के अंदर यहां बता दिया है। क्या है कर्म संन्यास, याद रखना होगा। कर्म संन्यास का मतलब ये नहीं हुआ कि सब काम छोड़ देना है, एक निश्चित काम करना है, उसका नाम है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास किसको कहते हैं? मनन किसके बारे में? आत्मा के बारे में। श्रवण मनन निधि ध्यासन आत्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में आपको करना है। अच्छा, यहां देखो तत् 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 वर्ड आया ना, यहां पर तत् मतलब परमात्मा है, यहां तत् का मतलब परमात्मा है। तत्परायणा तत्निष्ठा तदात्मना तद्बुद्धयो। देखो उल्टा चलेंगे अभी, पहली लाइन के अंदर जो चार वर्ड हैं, लास्ट वाला वर्ड हम पहले लेंगे। लास्ट वाला क्या है? तत्परायणा, उसके बाद तन्निष्ठा, तदात्मना, तद्बुद्धय। तत्परायणा मतलब क्या? आत्म तत्व एव परम अयनम, जिसने ये गोल निश्चित कर लिया है कि मेरे को आत्मा ही मेरा लक्ष्य है, मेरे को आत्मा को पाना है, आत्मा को जानना है, आत्मा का अनुभव करना है, जिसने ये गोल कर लिया। कब होगा ये? ऐसा विचार कब आएगा? कर्म योग करके मन शुद्ध जब होगा तब आपके अंदर ये विचार उठेगा। उसके पहले नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? गीता क्लास में क्यों नहीं लोग आते हैं? क्योंकि अभी कर्मयोग उनका नहीं हुआ, मन शुद्ध नहीं हुआ है, उनके मन में अभी आत्मा क्या है इसका विचार नहीं आता है। अभी क्या विचार आता है? अनात्मा का आता है। सब बहुत साइंटिफिक है, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो। हम लोग तो कई बार पूछते हैं, बाल विहार के बच्चे 450 आते हैं, मगर उनके माता पिता क्यों 50 होते हैं क्लास में, गीता क्लास में? कर्म योग नहीं किया है कुछ, जिसने थोड़ा सा किया है वही अंदर आ सकता है। अच्छा, तत्परायणा, जिसने ये निश्चित कर लिया कि हमारी जो है प्राथमिकता क्या है, अभी हमारी प्राथमिकता है कि हमको आत्मज्ञान चाहिए, हमें आत्मा चाहिए। ये कौन करेगा? कर्म सन्यासी करेगा, जिसने कर्मयोग कंप्लीट कर चुका है, जिसकी मन थोड़ा शुद्ध हो चुका है। कर्म सन्यासी मतलब क्या? श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए वो आएगा। अच्छा, अगर आप श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए अगर आ रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने थोड़ा सा कर्मयोग किया, थोड़ा मन शुद्ध है, नहीं तो आप आते नहीं। अच्छा, तो कर्म सन्यासी की फिर क्या क्वालिटी क्या हुई? पहला तो है वो सर्वतो विरक्त हो गया, अब उसको अनात्मा में इंटरेस्ट नहीं है। अनात्मा में अब इंटरेस्ट नहीं है, संसार में जगत में अब उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो उधर से विरक्त हो गया है। विरक्त होके अब वो कहता है हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा है। मेरा लक्ष्य मैंने ठीक कर लिया, मेरे को आत्मा चाहिए। तो अब वो सर्व कर्म संन्यास के अंदर आ रहा है। सर्व कर्म संन्यास में आ रहा है मतलब, आया समझ? कब शुरू होगा सर्व कर्म संन्यास? कर्मयोग जब कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा मतलब अधिकतर आपका मन प्योर हो गया है, अधिकतर प्योर हो गया है, तब आप कर्म संन्यास श्रवण मनन निधि ध्यासन में आएंगे। तो उधर से हटने का मतलब उधर विरक्त हो गया, संसार से वो विरक्त हो चुका है, अब संसार की चीजें उसको इतना अट्रैक्शन नहीं करती, अट्रैक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तदनिष्ठा तस्मिन एव स्थित है। जैसे आदमी जपनिष्ठ होता है ना, वैसे तत्निष्ठ। तत्निष्ठ मतलब, तत् मतलब मैंने क्या बताया आपको? परमात्मा। परमात्मा में निष्ठ है, परमात्मा में निष्ठ मतलब श्रवण और मनन में निष्ठ है। हम किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? कैसे ज्ञान में स्थित होंगे? तो ज्ञान का स्थित होने के लिए पहला कंडीशन उन्होंने बताया कि तत्परायणा, जिसने अपने गोल को निश्चित कर लिया है कि मेरे को आत्मज्ञान चाहिए या आत्मा का अनुभव चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन उन्होंने बताया तत्निष्ठा, तत्निष्ठा मैं अब उसके श्रवण और मनन के अंदर निष्ठ रहूंगा। जैसे जप निष्ठ होता है, जप करता रहता है, वैसे ये व्यक्ति, ये साधक अब श्रवण और मनन में लगा रहता है। फिर तद आत्मना, तद आत्मना मतलब तद सेम परमात्मा, तद आत्मना का मतलब है उसका मन तत्मय हो गया। तत्मय हो गया मतलब परमात्मामय हो गया, परमात्मामय हो गया मतलब निधि ध्यासन। देखो निधि ध्यासन हो गया। विजातीय प्रत्यय तिरस्कृत सजातीय प्रवाह रूपम अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति रूपम। अब केवल बोलता है मेरे को बस ब्रह्म नहीं ब्रह्म। निधि ध्यासन में हम क्या करते हैं, निधि ध्यासन में हम एक वृत्ति का सहारा लेते हैं, सजातीय वृत्ति, एक किस्म की वृत्ति होगी। विजातीय वृत्ति को छोड़ दो, विजातीय वृत्ति कौन हो गई उसमें, सजातीय अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म से अतिरिक्त दुनिया की जितनी भी वृत्ति हो सकती है वो सब विजातीय हो गई। अब वो निधि ध्यासन में बैठ, श्रवण मनन किया उसने, अब वो निधि ध्यासन में बैठ गया। निधि ध्यासन में बैठ के वो ब्रह्मन का चिंतन करता है, इसी को हम निधि ध्यासन या सविकल्प समाधि कहेंगे। विकल्प मतलब थॉट, विथ थॉट मेडिटेशन जब हम करते हैं तो वो सविकल्प समाधि है। तद्बुद्धया, तद्बुद्धया का मतलब हो गया, अब बुद्धि क्या है, निश्चयात्मिका है, उसके अंदर उसका साक्षात हो गया, साक्षात्कार हो गया। कर्मयोग किया, कर्मयोग करने के बाद में हमने निश्चित कर लिया कि मेरे को जानना है आत्मा क्या है। आत्मा जानने के लिए हमने सर्वकर्म संन्यास लिया। सर्वकर्म संन्यास का मतलब श्रवण मनन निधि ध्यासन, हमने श्रवण मनन में निष्ठ हो गए। उसके बाद में हम निधि ध्यासन या सविकल्प समाधि की, समाधि के बाद में मेरे को साक्षात्कार हो गया, अनुभव हो गया, उसको कहेंगे तद्बुद्धया। वाह, तो ये करने से लाभ क्या होगा ये तो पहले बताओ। नहीं, इतना झंझट करेंगे, शुरू से आप कर्म योग से बोलते आ रहे हो, उसके बाद श्रवण करो, मनन करो, फिर निधि ध्यासन करो, साक्षात करो, मिलेगा क्या। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्दूत कलमसा, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, फिर संसार में नहीं वापस आएगा, अपुनरावृत्तिम वापस नहीं आना है और आपको। क्यों, क्योंकि आपका ज्ञान चला गया, पाप पुण्य आपके चले गए। जिस दिन आपको पता चल गया कि मैं अकर्ता आत्मा हूं, उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मैं आज ही अकर्ता आत्मा नहीं बना, इसके पहले भी मैं अकर्ता आत्मा ही था, मगर अज्ञान के कारण मैं अपने आप को कर्ता मानता था। इसलिए पिछले जितने भी हमने कर्म किए हैं उसके सारे पाप पुण्य खत्म हो गए। जिस दिन ज्ञान होता है उस दिन सारे पाप पुण्य खत्म हो जाते हैं पिछले, और आप में क्या आएगी, कृत कृत्यता आ जाएगी, फुलफिलमेंट आ जाएगी, और हमें दुनिया से कुछ नहीं लेना है, मैं फुलफिल्ड हूं। दुनिया से कुछ नहीं लेना मतलब ऐसा व्यक्ति खाएगा, पिएगा, सोएगा, कपड़े पहनेगा, ये सब करेगा, मगर दुनिया की किसी वस्तु के ऊपर अपने सुख के लिए निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि उसको सुख का सोर्स पता लग गया। अच्छा, ये व्यक्ति कौन है भाई, ज्ञान निर्धूत कलमसा, कलमसा माने धूल, धूल मतलब पाप पुण्य, जिसके सारे पाप पुण्य सब खत्म हो गए। तो ये कैसे खत्म हुए, ये ज्ञान का फल है। जैसे ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान है, मैं अकर्ता आत्मा हूं, मैं अकर्ता आत्मा हूं, तो मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किए गलत काम, मैंने पुण्य भी नहीं किए, मैंने पाप भी नहीं किए, तो इसका भागीदार कौन है, मैं नहीं हूं, खत्म। मैंने किया नहीं तो फिर मैं तो, तो ऐसा व्यक्ति जब तक वो जीवित है तब तक वो जीवन मुक्त है, और जिस दिन देह छोड़ देगा वो विदेह मुक्त हो जाता है। तो ज्ञान मिल जाने के बाद में भी आप जीवित रहेंगे, और जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको जीवन मुक्त हम कहेंगे, और जब देह छूट जाएगा तो विदेह मुक्त हो गया, मुक्त हो गए आप। अच्छा, जीवन मुक्त में ज्ञान का फल क्या है, तो वो 18 और 19वें श्लोक में भगवान दो जगह बता रहे हैं। अब आप जीवित हैं, ज्ञान हो गया, तो आपके अंदर क्या बदलाव आया? ज्ञान हो जाने से आप ऐसा मत सोच लेना कि उसको जो है फिर वस्त्र आ जाता है, कोई नया वस्त्र उसको मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी वस्त्र पहने रह सकते हो, निर्वस्त्र भी रह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान होने के बाद पता नहीं लगेगा आपको बाहर से, मगर उसकी सोच क्या है वो बता रहे हैं। 18वां से
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः।
देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ब्राह्मण वो ज्ञानी है, ब्राह्मण यहां ज्ञानी है। कैसा है भाई? विद्या उसके पास है। कौन सी विद्या है? कंप्यूटर की विद्या है? नहीं नहीं, आत्म विद्या की बात हो रही है यहां। विद्या, अब विद्या जताति विनयम, विद्या अगर जिस दिन आपको मिल जाएगी तो आपके अंदर ह्यूमिलिटी आ जानी चाहिए, विनय आना चाहिए। ऐसा व्यक्ति विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, उसके अंदर उसके चेहरे पर एक चमक होती है, एक ग्लो होता है। केवल विद्या होने से भी नहीं होगा, केवल विनय होने से भी वो चमक नहीं होगी। विद्या विनय संपन्न ऐसे ब्राह्मण में, ऐसे ज्ञानी में उसके चेहरे पर एक ग्लो होता है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो व्यक्ति सत्व गुण प्रधान है, है? विद्या विनय संपन्न ऐसा व्यक्ति क्या है? सत्व गुण प्रधान है। अच्छा, अब एक देखो, दूसरा व्यक्ति है स्वपाके, दूसरे लाइन के अंदर स्वपाके। स्वपाके मतलब क्या है? देखो, कुत्ता जो है ना बहुत आपका फेथफुल प्राणी माना जाता है, बहुत विश्वसनीय प्राणी है। अगर कोई कुत्ते को काट के खा ले उसको स्वपाके कहते हैं, स्वपाके। अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे? असंस्कृत व्यक्ति। तो एक ब्राह्मण हुआ वो हो गया बहुत संस्कृत व्यक्ति, और स्वपाके हुआ असंस्कृत व्यक्ति, मतलब तमोगुणी है। तो इस श्लोक के अंदर एक सत्वगुणी का एक दृष्टांत लिया है और भगवान एक तमोगुणी का ले रहे हैं। गुण कर्म उत्कृष्ट है ब्राह्मण के, और गुण कर्म स्वपाके जो चंडाल है, जो कि कुत्ते का मांस खाता है, वो क्या है? निकृष्ट है। निकृष्ट हुआ ना आपका डॉग, आपका कुत्ता, आपका फेथफुल है, विश्वसनीय है, आप उसी को काट के खा लिए, तो ये क्या सत्वगुण हुआ? निकृष्ट कर्म हुआ ना, ये तो उत्कृष्ट कर्म नहीं हुआ ना, निकृष्ट कर्म हुआ। तो भगवान देखो दो एग्जाम्पल लिए, ह्यूमन बीइंग से दो एग्जाम्पल लिए और एनिमल किंगडम से तीन एग्जाम्पल लेंगे। तो ये दो एग्जाम्पल के अंदर एक उत्कृष्ट व्यक्ति, एक निकृष्ट व्यक्ति का लिया, और इसके बाद में भगवान कहते हैं पशुओं में से क्या उदाहरण लिया? एक गाय का लिया, एक हाथी का लिया, एक कुत्ते का लिया। गाय क्या है? गवी, हस्तिनी, हाथी, सुनी। सुनी मतलब कुत्ता, तो गाय को लोग जो है सात्विक कहते हैं, हाथी को तामसिक कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि तो हमारे इसमें आर्मी में काम आता है तो राजसिक हुआ, ठीक है मान लेते हैं। या कुत्ता को कई लोग कहते हैं तामसिक है, सोया रहता है सारा दिन, कुछ काम नहीं करता है। अब कुछ लोग बोलते नहीं ये तो बहुत राजसिक है, सारी रात नाइट ड्यूटी देता है। तो खैर हम उस डिटेल में नहीं जाते हैं, हम यहां पर यह दिखाना चाहते हैं भगवान ने तीन एग्जाम्पल इसलिए कि सत्व रजस तमस तीन किस्म के प्राणी उन्होंने ले लिए, तीन किस्म के पशु ले लिए। गाय को हम सात्विक मानते हैं, हाथी को आप राजसिक ले लो या कुत्ते को तामसिक ले लो या उल्टा कर लो, जैसे भी समझ लो, हमको इसमें से निकालना यह है कि सत्व रजस तमस निकालना है पशुओं में से। पंडिता समदर्शिन, पंडिता समझे जाना, इन सब में जो पंडित है, पंडित ना जो आत्मज्ञानी है, वो क्या देखता है, एक चीज देख रहा है। जो ज्ञानी है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण स्वपाके जो जो कुत्ते का मांस खाता है उसमें, सात्विक पशु जो है या राजसिक पशु जो है या तामसिक पशु है, इन सब में एक चीज का दर्शन करता है। क्या चीज है वो? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी का कर्म नहीं देख रहा, किसी का शरीर नहीं देख रहा है। आप एक चीज कैसे देखोगे, जब उसकी उपाधि को बात दोगे, फॉल्सिफाई करोगे, तभी तो आत्म तत्व देख पाओगे। ऊपर से देखोगे क्या नजर आएगा, ऊपर से सब जो है भेद 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 नजर आएंगे, सात्विक राजसिक तामसिक ये सब नजर आएंगे। मगर ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी ने सब अनात्म वस्तुआ जो कि सत्व रजस तमस से बनी हुई हैं, उन सबको जो है फॉल्सिफाई कर दिया, और फॉल्सिफाई करके सबके भीतर जो है आत्मा को वो देख रहा है, इसलिए वो समदर्शी है। अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी सारी की सारी चीजें अध्यारोप कर देता आत्मा पर, अध्यारोप कर देता है आत्मा पर, ये निकृष्ट व्यक्ति है, ये उत्कृष्ट है, ये सात्विक राजसिक तामसिक है, ऐसा कह देता है। वो आत्मा अनात्मा भेद नहीं करता है, सात्विक राजसिक तामसिक तो उपाधि है, आत्मा थोड़ी ना सात्विक राजसिक तामसिक होता है। हमारा ज्ञानी ऐसा कह देता है। मनीषा पंचकम में शंकराचार्य जी एक बार बनारस में गंगा स्नान करके, अगर आपको न मालूम हो तो बनारस की गलियां बहुत छोटी हैं, आप अगर बनारस जाएंगे तो विश्वनाथ के मंदिर से घाट तक जाने की जितनी भी गलियां हैं ना, ये छोटी छोटी गलियां हैं, और उधर से कहीं से कोई मुर्दा आ रहा है तो सबको अलग हो जाना है, एक आदमी उधर से आएगा तो एक को इधर होना है, तब वो पास करेगा तब आप जाएंगे। तो शंकराचार्य जी स्नान करके जा रहे थे, उधर से एक चंडाल आ रहा था चार कुत्ते लेके, तो शंकराचार्य जी ने कहा हटो हटो हटो, तो चंडाल कहता है किसको हटने को कह रहे हो, अगर तुम आत्मा की दृष्टि से कह रहे हो तो आत्मा तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा तो एक है, किसको हटने को कह रहे हो, और शरीर की दृष्टि से कहते हो तो तुम्हारा शरीर पंच महाभूत का बना है, मेरा भी पंच महाभूत का बना हुआ है, किसको तुम हटने को कह रहे हो। शंकराचार्य जी समझ गए तो ज्ञानी आदमी है, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी अगर आपकी स्थिति है तो चंडाल मेरा गुरु है, शंकराचार्य जी ने उसको गुरु कहा, वो चंडाल भगवान शिव थे और चार कुत्ते चार वेद थे। समदर्शी, तो शंकराचार्य जी को बता दिया तुम क्या समदर्शी हो, समदर्शी का मतलब जो है सत्व रजस तमो गुण के बाहर जाना है, और तुम चंडाल देख के बोलते हो हटो हटो, क्या ज्ञान है तुम्हें, आया समझ में आपको, चार वेद, ऋग वेद यजुर वेद साम वेद अथर्व वेद। अच्छा देखो, आज जो ज्ञानी होता है ना वो समदर्शी होता है, समवर्ती नहीं होता है, तो समदर्शन और समवर्तन में फर्क है। समवर्तन क्या हुआ, आप जैसे आप बाघ को देख रहे हो कि सांप को देख रहे हो, तो समदर्शी देखेगा हाँ उसकी आत्मा मेरी आत्मा एक है, मगर वो बाघ को या सांप को नहीं बोलेगा यू कम मैं मेरे साथ सो तुम, ऐसा नहीं करता है, उसको हक देगा ना, वो देने भी आएगा तो भाग जाएगा। तो समदर्शी जो हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं आपको समवर्तन है, आप सम सम देख रहे हैं तो ठीक है, आप स्टूडेंट चेयर जो है अपना टीचर सब एक जगह बैठ जाएंगे, एक लेवल पर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, सब एक नहीं हो जाते हैं। हमारे जैसे वहाँ पर इंडिया के अंदर अभी तक लोग तो भेद रखते थे ना कि ये हमारा जो है नौकर है, हेल्पर है, हम लोग उसको नहीं बोलते हैं कि तुम जाके सोफे पर बैठ जाओ, अच्छा थोड़ा विश्राम कर लो, हमारे बेडरूम में जाओ सो जाओ, कहते हैं आप। आपकी जो क्लीनिंग लेडी आती है उसको बोलते हैं यू आर वेरी टायर्ड टुडे, गो एंड टेक रेस्ट, ऊपर बेडरूम मास्टर बेडरूम में जाओ तुम, नहीं कहते हैं। क्यों? समवर्ती नहीं कर, होने को कहा यहां, समदर्शी होने को कहा, आप उसके प्रति आपके जो है इमोशंस ठीक हैं, समवर्ती ना हो। तो ज्ञान चक्षु से आपको एकत्व तो देखना है, और चर्म चक्षु जो देख रहा है उसको फलसीफाई करना है। चर्म चक्षु क्या देख रहा है? चर्म चक्षु केवल ऊपर का शरीर देख रहा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, ये हाथी है, ये निकृष्ट आदमी है, ये चर्म चक्षु देख रहा है। ज्ञान चक्षु से उसको फॉल्सिफाई करके हमको क्या देखना है? उसके भीतर की आत्मा को देखना है, तब हम समदर्शी होंगे। अच्छा, और क्या कहते हैं भगवान?
इहैवतैर्जित सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः, येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म, निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः।
इह एव, यह जीवन दशा, यहाँ जीवित काल में ये हो रहा है। तई, तई मतलब शंकराचार्य जी कहते हैं समदर्शी भी पंडित ही, जिसने आत्मज्ञान पा लिया है और वो समदर्शी हो गया। समदर्शी मतलब सबके अंदर एक आत्मा को देख रहा है। जित सर्ग, जित सर्ग मतलब इसने सारे संसार को जीत लिया। देखो संसार के अंदर बहुत भेद है, हम भेद करते रहते हैं ना, कितने किस्म के भेद होते हैं। अच्छा, हम बोलेंगे ये बच्चे हैं, ये युवा हैं, उसके बाद में वृद्ध हो गए हैं, ऐसे करते हैं। हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप करते हैं, देश के हिसाब से कर देते हैं, रंग के हिसाब से भेद कर देते हैं, ये काले हैं, ये पीले हैं, ये सफ़ेद हैं, ऐसा हम कर देते हैं। मगर ज्ञानी, ज्ञानी इन सब में एक को देखता है, एक को देखता है। जित सर्ग, इसको हम जित सर्ग कहते हैं। संसार को इसने जीत लिया है, अब ये संसार इसको छू नहीं सकता, संसार छू नहीं सकता, संसार छू नहीं सकता मतलब क्या? आप संसार दुख नहीं दे सकता, क्यों नहीं दुख दे सकता उसको? आत्मा और अनात्मा में दुख कौन देता है? निश्चित है, निश्चित है अनात्मा दुख देता है, और ये अनात्मा से विरक्त हो चुका है, हमने पहले ही देख लिया है। कर्म संन्यास में जाने के पहले आपको जो है विरक्त होना पड़ेगा, अनात्मा को छोड़ना पड़ेगा, और आत्मज्ञान पाने के बाद में क्या हो गया? वो सच्चिदानंद हो गया। अब वहां पर उसके अंदर दुख कहां से आएगा? दुख तो अनात्मा में है, और ज्ञानी कहां बैठा है? आत्मा में बैठा हुआ है। मैं ब्रह्म हूं, अकर्ता आत्मा हूं, वो अकर्ता आत्मा का उसका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूप है वो, तो दुख उसको नहीं छीता। उसने कैसे जीता ये सर्ग को? ये साम साम्य स्थितः मनः, उसका मन साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था मतलब ब्रह्म भावे, ब्रह्म के अंदर स्थित है। जिसका मन ब्रह्म में स्थित है उसको तो कोई किस्म का दुख आ ही नहीं सकता। अच्छा, कर्मयोग और कर्म संन्यास के पश्चात उसका मन दृढ़ रूप से ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म में स्थित कब होगा? कर्मयोग करके मन शुद्ध करना है, कर्म संन्यास में श्रवण मनन निधि ध्यासन करना है। करने के बाद में आपकी अनुभूति हुई, उस अनुभूति के अंदर दृढ़ रहना है, तब दृढ़ होगा। ये व्यक्ति की स्थिति ऐसी है, इतना रास्ता उसने ट्रेवल कर लिया है, अब वो उसमें स्थित है, उसके लिए वो इसमें नेचुरल है, वो नेचुरल। अब वहां से वो क्या देखता है, ये सर्वधर्म तो एक ही है। वो कहेगा क्रिश्चियनिटी भी एक है, इस्लाम भी एक है, हमारे ठाकुर रामकृष्ण ने उन सबको करके देख लिया। वो कुछ दिन तक जो है मुसलमान बने रहे, कुछ दिन तक क्रिश्चियन बने रहे, बोले अरे तो वहीं पहुंचे, क्रिश्चियनिटी करके भी हम जहां पहले पहुंचे तो वहीं पहुंचे हैं, इस्लाम को फॉलो करके भी हम वहीं पहुंचे हैं। तो उसकी दृष्टि अब क्या हो गई, सब धर्म ठीक है, सब ओपन है, सब ठीक है। अच्छा, निर्दोष ही समम ब्रह्म, ये हुआ कैसे, उसने सारे जगत को जीत कैसे लिया? सारा जगत जो है हम अनुभव में कैसे आता है, वृत्ति रूप में आता है, वृत्ति मतलब थॉट रूप में। जब आप निधि ध्यासन में जाते हो तो आप क्या करते हो, जो वृत्तियां अनेक वृत्तियां होती हैं उनको आप विथ एफर्ट जो है एक वृत्ति में लाते हो। ध्यान में जब बैठते हैं हम क्या करते हैं, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, एक वृत्ति में हम चलते हैं, बाकी सब वृत्तियां को छोड़ दिया और ये वृत्ति भी खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है मतलब लोप हो जाती है, अब क्या बचा, ब्रह्मन बचा। तो वृत्तियों के पार चले जाना ही जित सर्ग होना है, जित सर्ग हो जाना है। तो ये है जीवन मुक्त दशा ज्ञानी की। अच्छा, अब जीवन मुक्ति के लक्षण जो है पांच श्लोक में भगवान बताने वाले हैं, 20 से लेके 24 तक। ये देखो पहले भी हमने जो है स्थित प्रज्ञ के अंदर ये लक्षण देखे हैं, और बाद में भी चैप्टर 12, 13, 14 में ज्ञानी के लक्षण आने वाले हैं, ज्ञानी के लक्षण आने वाले हैं। चैप्टर 2 में स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमने देखे थे, 18 श्लोक है वहां पर। तो फिर से एक बार राउट देख लें, कैसे कहां तक कैसे पहुंचे हैं। पहले क्या शुरू किया, कर्मयोग। कर्मयोग क्या है, किसकी खुशी के लिए, अभी कैसे करते हैं काम, आप नहीं करते। पहला काम क्या करना है, कौन सा काम करना है, जो आप जो करते हैं वही काम भगवान की खुशी के लिए, इतना ही करना है। इससे करने से क्या होगा, मन शुद्ध होगा। मन जब शुद्ध हो जाएगा फिर आप कर्म संन्यास में जाएंगे। कर्म संन्यास का मतलब क्या हुआ, श्रवण मनन निधि ध्यासन। इसके बाद में क्या होगा, निधि ध्यासन होता है सविकल्प समाधि, अपने आप निर्विकल्प समाधि में आप पहुंच गए, आपको ज्ञान हो गया, उसमें आप स्थित हो गए। ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है, ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है, एक तो हमने देखा समदर्शी हो गया, वो समदर्शी हो गया। बाकी लक्षण क्या है वो 20 से 24 तक हैं, एक श्लोक और हम देखेंगे, 20वां श्लोक देख लेते हैं।
न प्रहिषेत प्रियं प्राप्य, प्रहिषेत प्रियं प्राप्य, नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं, नोद्विजेत प्राप्य च प्रियं, स्थिरबुद्धिरसम्मूढः,
स्थिर बुद्धिर सम्मूढः,
ब्रह्मविद्
ब्रह्मनिष्ठितः न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियं। प्रिय वस्तु, अनुकूल परिस्थिति या कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जो अनुकूल है, जिसको हम पसंद करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब मिल जाए ऐसा अनुकूल परिस्थिति आ गई या कोई मित्र आ रहा है तो हम खुशी हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। कई बार कहीं अच्छी नौकरी मिल गई, प्रमोशन मिल गया, बहुत खुश हो गए। न प्रहिष्यत प्रियं प्राप्य, मगर जो ज्ञानी है वह ऐसी प्रिय स्थिति, व्यक्ति या किसी वस्तु के पाने पर बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता है, बहुत हर्षित नहीं होता है। मन में खुशी होती है मगर बहुत खुशी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वह व्यक्ति वस्तु और परिस्थिति की अनित्यता को जानता है कि ये अभी जो मेरे को कंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस, अनुकूल परिस्थिति मिली है, ये अनुकूल परिस्थिति भी अनित्य है। अज्ञानी क्या चाहता है? ये अनुकूल परिस्थिति बनी रहे, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। मगर ज्ञानी वो जानता है कि यह अनुकूल परिस्थिति भी कुछ समय के लिए है, इसलिए वो उसको ज्यादा महत्व नहीं देता। हर्ष होता है, आनंद होता है, मगर अनित्य है ये जानकर उसको विशेष महत्व नहीं देता। न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, अप्रियम अनकंड्यूसिव सर्कमस्टांसेस, आपका दुश्मन चला आ रहा है या कोई ऐसी वस्तु मिल गई जो आपको पसंद नहीं है या सर्कमस्टांसेस कंड्यूसिव नहीं है, जहां भी जा रहे हैं काम नहीं हो रहा है। कभी आपने देखा है, अनुभव किया है? हमने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है, काम काज इतने काम करने हैं, आज हमको यहां यहां इसी ऑफिस में ये करना है, ये काम करना है, ये करना वो करना है, जहां जाओ होता ही नहीं है, आदमी नहीं है, पेपर फाइल करना था, क्लर्क नहीं आया, आज आपका पेपर नहीं फाइल करेंगे, आज वहां कुछ देना था वहां गए तो बोले आज तो स्टॉक खत्म हो गया है। आप पीछे कभी सोच के देखिएगा, कई बार ऐसा होता है कुछ नहीं हो रहा है तो अज्ञानी लोग दुखी हो जाते हैं। मैं घर आके सो जाता था कल होगा ये, दूसरे दिन जाओ सब होता है, सब काम हो जाते हैं। तो आप जो है वो अप्राप्य के जो अप्रिय वस्तु के प्राप्त पर वो दुखी नहीं होता, वो जानता है चला जाएगा, ये नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, अच्छी बात है, उद्विग्न नहीं होता था। तो अज्ञानी के लिए प्रिय अप्रिय प्रशंसा निंदा बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ज्ञानी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अज्ञानी महत्व देता है, आज हम अच्छे कपड़े पहन के गए थे, देखो उसने देख के कुछ हमको कहा नहीं, कितना महत्व दे रहा है अज्ञानी है। आज उसने हरिओम नहीं कहा मेरे को, देखो महत्व दे रहा है कितना। ज्ञानी पर कोई थूक भी दे चुप है, ज्ञानी की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दे तब भी ठीक है। कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी आप आए तो बारिश आ गई, इतना सूखा पड़ा हुआ था बारिश आ गई, स्वामी जी मैं भीतर ही भीतर सोच रहे हैं हमारे कारण बारिश हुई है। तो प्रशंसा के अंदर फंसते नहीं है। ज्ञानी दोनों की स्थिति में समता बनाए रखता है, समता ही उसकी साधना है। देखो हम लोगों ने दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में देखा था, दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक के अंदर भगवान ने कहा था सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व, कैसे कर्तव्य कर्म करने चाहिए, ये भगवान ने यहां दूसरे अध्याय में बता दिया था कि आपको समता बनाए रखनी है। यही समता आगे जाके ज्ञानी का जो है एक लक्षण बन गया, सुख आए दुख आए वो दोनों के अंदर ही सम रहता है। प्रिय एवं अप्रिय स्थिति किसी भी देहधारी के जीवन में आती है, सबके आएगी, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। ज्ञानी के शरीर में भी दुख आते हैं, दुख आते हैं। जो देह में आत्मबुद्धि रखते हैं वो स्थिति के अनुसार हर्ष एवं शोक में जाते हैं। जो देह में आत्मबुद्धि रखते हैं, देह में आत्मबुद्धि रखते हैं, जो अनात्मा में आत्मबुद्धि रखते हैं, जो अनात्मा को आत्मा मानते हैं, जो अनात्मा को महत्व देते हैं, जो अनात्मा के नियम का पालन नहीं करते, नहीं समझते कि अनात्म वस्तु सब की सब चेंजिंग एंड पेरिसेबल है, वो सब क्या होते हैं? वो हर्षित होंगे और दुखी होंगे। उनकी अनुकूल परिस्थिति होगी तो हर्षित हो जाएंगे, प्रतिकूल होगी तो दुखी हो जाएंगे। आत्मज्ञानी जो उपाधि रहित आत्मा को जानता है वो हर्ष शोक नहीं करता, क्योंकि आत्मा में स्थित पुरुष के लिए हर्ष और शोक असंभव है। आत्मा में स्थित पुरुष के लिए हर्ष और शोक असंभव है। हर्ष और शोक कहाँ से आते हैं भाई? अनात्मा से आते हैं। जो आत्मा में स्थित है उसके लिए असंभव है। अच्छा, ज्ञानी के इसने कैसे समता प्राप्त की? अब प्रश्न ये आता ना, इसने समता कैसे प्राप्त की? तो यहां पर दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मवित ब्रह्मणी स्थिता। स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि, देखो समता निर्भर करती है कि बुद्धि आपकी कहां पर है। बुद्धि आत्मा में है कि अनात्मा में है? तो ज्ञानी की बुद्धि कहां है? आत्मा में है। आत्मा कैसा है? निर्दोष ब्रह्म है, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई संसार नहीं है, उसमें पाप पुण्य नहीं है, उसमें वासना नहीं है। ब्रह्म के अंदर पाप पुण्य नहीं है, दोष नहीं है, और उसका मन चलाए मन संसार के अंदर नहीं है। संसार के परे, अनात्मा के परे, वृत्तियों के परे उसका मन है। वृत्ति के परे वो भगवान बैठा हुआ है, वो आत्मा है। अगर उसके बाद भी अगर संसार दिखता है तो उससे प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद भी संसार, तो संसार में तो रहेगा जीवन मुक्त, तो संसार दिखता है तो उससे भी वो प्रभावित नहीं होता है। असम्मूढ़ है, असम्मूढ़ में संशय रहित ज्ञान। अब उसको जीव जगत ईश्वर के बारे में कोई संशय नहीं है। जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब जो है जब अज्ञानी के बारे में इन चीजों में संशय रहता है, पता नहीं क्या है, ईश्वर है कि नहीं है, लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं। मैं ज्ञान होने के बाद में जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर के कोई संशय नहीं है। वो कैसा है? ब्रह्मविद। ब्रह्मविद मतलब ब्रह्म को जानने वाला, वो ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाला है। ब्रह्मनी स्थित है, और स्थित कहां है? ब्रह्मन में स्थित है। ब्रह्मनी सेवंथ केस इन ब्रह्मन, ब्रह्मन में वो स्थित है। तो साधना क्या हुई, फिर से एक बार देख लें साधना। रोड मैप तो जान के रखो, पहले कर्मयोग करना है, उसके बाद में सर्वकर्म संन्यास है। सर्वकर्म संन्यास का मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन करना है। फिर स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि कहां रहनी चाहिए? आत्मा में, अनात्मा में नहीं। स्थिर बुद्धि, उसके बाद में आप ज्ञानी हो गए, तब आपका समदर्शन होगा, आपको फिर जो है संसार के सुख और दुख प्रभावित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब आप लोगों ने समझ लिया क्यों नहीं करेंगे। विज्ञान साइंस भी आपको साथ साथ पता लगना चाहिए, केवल एक्सेप्ट कर लेने से नहीं होगा। ज्ञानी को सुख दुख नहीं होता है, ज्ञानी को सुख दुख होता है, उसके शरीर को होता है। वो कहता मेरे शरीर को हो रहा है, मैं क्या करूं, होने दो उसको, अलग है, मैं शरीर नहीं हूं। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम्।
एवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।